नमस्कार भारत, 27 जनवरी रविवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमरीकी प्रतिनिधि ने दिए संकेत, अफगानिस्तान में 17 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने को लेकर समझौते के करीब पहुंचे अमरीका और तालिबान। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी की वजह से सामने आ रहा किसानों के नाम पर हुई धांधली का खेल।
कई जगह दो दो खाते चला दिए, कई जगह तीन खाते चला दिए, कई जगह किसान नहीं है उसके बाद भी उसके खाते से पैसा लेकर रोटेट करते थे।
जानेंगे त्रिपुरा में ईसाई धर्म छोड़कर क्यों हिंदू बने 22 आदिवासी परिवार।
पहले था सनातन धर्म में, उसके बाद हम लोग गया यीशु मसीह का धर्म में, फिर सनातन धर्म में चला गया। अभी टेंशन में हूँ, किसको मानूं और किसको छोड़ूं।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अफगानिस्तान में अमरीका और तालिबान के बीच समझौते के आसार बनते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान की यात्रा पर गए अमरीकी प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद तालिबान के साथ बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी सरकार को देंगे। तालिबान और अमरीका के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों का कहना है कि 17 साल पुराने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए हो रहे समझौते पर प्रगति हुई है। वेनेजुएला के राजनीतिक संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी गृह मंत्री माइक पोम्पियो ने परिषद के अन्य सदस्यों से वेनेजुएला में विपक्ष के नेता खुआन गोइदो को मान्यता देने की अपील की। वहीं रूसी राजदूत ने अमेरिका पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ वेनेजुएला के विदेश मंत्री खोखे अरेयासा ने नए चुनावों की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कोई हमें ये नहीं बता सकता कि हमें कब चुनाव कराने हैं और कब नहीं। जो फैसला लिया जाएगा वो वेनेजुएला के लोगों, सरकार और मौजूदा विपक्ष का होगा। हम डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में युद्ध नहीं कराने देंगे। ये थे वेनेजुएला के विदेश मंत्री खोखे अरेयासा। ब्राजील के मिनास शराइस राज्य में बांध गिरने से कीचड़ के सैलाब में फंसे 50 लोगों को बचा लिया गया है। इस दुर्घटना में अभी तक 34 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 300 लोगों के और इसमें फंसे होने की आशंका है। लगातार बचाव कार्य जारी है, लेकिन राज्य के अधिकारियों का कहना है कि और लोगों के बचने की संभावना बहुत कम है। राज्य के गवर्नर रोमेयु जेमा ने कहा है कि जो भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसे सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि जो भी इस दुखद घटना में शामिल है उन्हें सजा दी जानी चाहिए, ताकि सबके लिए एक उदाहरण बन सके। इस संबंध में सभी कानूनी कदम पहले ही उठा लिए गए हैं। बांध बनाने वाली कंपनी की अरबों डॉलर की संपत्ति को ब्लॉक कर दिया गया है। ये थे मिनास शराइस राज्य के गवर्नर रोमेयु जेमा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन में कनाडा के राजदूत जॉन मकैलम को पद से हटा दिया है। जॉन मकैलम ने हुआवे की टेलीकॉम कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी को कनाडा में हिरासत में लेने पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मंग वांजो के खिलाफ मामला खत्म करना कनाडा के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे एक दिन पहले मकैलम ने अपने उस बयान के लिए माफ़ी मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंग वांजो के पास वॉशिंगटन प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूत मामला था। वहीं प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने मकैलम से इस्तीफा देने के लिए कहा है। लेबनान के शिया इस्लामिस्ट मूवमेंट हिजबुल्ला के प्रमुख ने सीरिया में उन पर होने वाले लगातार हमलों को लेकर इसराइल को चेतावनी दी है। हिजबुल्ला ने कहा कि यह हमला इलाके में युद्ध का कारण बन सकता है। महीनों बाद पहली बार आए सार्वजनिक बयान में हसन नसरल्ला ने कहा है कि हिजबुल्ला अपने एक भी लड़ाके की मौत को लड़ाई का ऐलान मानेगा। उन्होंने इसराइल के शहर तेल अवीव पर हमला करने की धमकी भी दी। हिजबुल्ला सीरिया सरकार की ओर से ईरानी सुरक्षा बलों के साथ लड़ रहा है। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ चल रहे येलो वेस्ट मूवमेंट में लगातार 11वें सप्ताह में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर से झड़पें हुईं। राजधानी पेरिस में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले छोड़े। अधिकारियों ने कहा है कि रात को भी निगरानी शुरू हो गई है। वहीं एक्टिविस्ट भी दो धड़ों में बट गए हैं। एक धड़ा मई में होने वाले यूरोपीय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने के पक्ष में है और दूसरा जनमत संग्रह कराने के। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। अफगानिस्तान में पिछले 17 सालों से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति स्थापित करने के इरादे से कतर में अमरीका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच 6 दिन तक वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद कुछ सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं। ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि अगर तालिबान और अमरीका के बीच समझौता हो गया तो दशकों से हिंसा का सामना कर रहे अफगानिस्तान के लोगों को राहत मिलेगी। कतर में हुई वार्ता को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी से।
अफगानिस्तान में तालिबान से वार्ता के लिए अमरीकी प्रतिनिधि जलमे खलीलजाद ने कहा है कि अमरीका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में 17 साल पुराने संघर्ष को खत्म करने के लिए हुई वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जलमे खलीलजाद ने ज्यादा जानकारी तो नहीं दी मगर लगातार कई ट्वीट करके कहा कि कतर में बेमिसाल 6 दिनों में इतना कुछ निकलकर सामने आया है जितना पहले कभी नहीं आया। उन्होंने बताया कि वह अफगान सरकार के अधिकारियों से चर्चा के लिए काबुल जा रहे हैं। जलमे खलीलजाद ने अपने एक और ट्वीट में कहा,
हम जल्द ही बातचीत शुरू करेंगे, हमें कई मसलों पर बात करनी है। जब तक सभी चीजों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक किसी पर सहमति नहीं बनेगी और सब कुछ में अफगानिस्तान में मौजूद सभी पक्षों के साथ वार्ता और युद्ध विराम शामिल है।
वहीं तालिबान ने अभी तक अफगान अधिकारियों के साथ सीधी वार्ता करने से इनकार किया है। तालिबान अफगान अधिकारियों को कठपुतली कहकर खारिज करता रहा है। तालिबान का कहना है कि वह सरकार से तभी समझौते पर बात शुरू करेगा जब अमरीकी सैनिकों के अफगानिस्तान से जाने को लेकर कोई पक्की तारीख तय हो जाएगी। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने तालिबान सूत्रों के हवाले से लिखा है कि समझौते की मुख्य बातों में यह बात भी शामिल है कि विदेशी सैनिकों को समझौते पर दस्तखत होने के 18 महीनों के अंदर वापस जाना होगा। बदले में तालिबान ने यह आश्वासन दिया है कि वह अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को अमरीका पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान में अड्डे नहीं बनाने देगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष इस बात को लेकर भी सहमत हो गए हैं कि दोनों ओर से कैदियों की अदला बदली की जाएगी और कुछ तालिबान नेताओं पर लगाया गया ट्रैवल बैन भी हटाया जाएगा। इस समझौते पर बीबीसी अफगानिस्तान संवाददाता सिकंदर किरमानी का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच 6 दिनों तक हुई बातें महत्वपूर्ण रही हैं और इससे पता चलता है कि संघर्ष का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए वे कितने गंभीर हैं। लेकिन बहुत से आम अफगानों के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या युद्ध विराम की संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि युद्ध से त्रस्त जनता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पहले कहा था कि तालिबान अगर युद्ध विराम के लिए सहमत हो जाता है और देश के संविधान को मान्यता दे देता है तो उसे एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दे दी जाएगी। हालांकि विश्लेषक ये कहते हैं कि इस तरह से सैनिक हटाए जाने को तालिबान अपनी जीत के रूप में प्रचारित कर सकता है।
अफगानिस्तान को लेकर अमरीका और तालिबान शांति समझौते के करीब पहुंचे, जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर किसानों की कर्ज माफी की वजह से एक बड़ी गड़बड़ सामने आ रही है। ऐसे किसानों के नाम बड़ी तादाद में सामने आए हैं जिन्होंने कभी कर्ज ही नहीं लिया मगर उनके नाम पर कर्ज दिखाया गया है। माना जा रहा है कि ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से सहकारी समितियों ने किया था। राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच के बाद ऐसे मामलों में दोषियों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सुनिए भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर सहकारी बैंकों में घोटाले की बड़ी शिकायतें मिल रही हैं। यह शिकायतें प्रदेश के हर जिले से मिल रही हैं। ऐसे किसान हर गांव में मिल रहे हैं जिन्होंने कभी कर्ज लिया ही नहीं लेकिन उनका नाम कर्ज वाली सूची में दिख रहा है। यह सब सहकारी बैंकों की मिलीभगत से किया गया। यह घोटाले पिछली सरकार के वक्त में हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिसमें 0% ब्याज में मिलने वाली ब्याज अनुदान की राशि भी सहकारी समितियों ने हड़प ली है। हरदा के निमगांव में रहने वाली गीताबाई के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और उन्होंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है लेकिन उन पर भी कर्ज दिखाया जा रहा है। उनके पोते सतपाल जानी ने बताया,
दादी जी के नाम मतलब 2000 में कर्जमा कोई थी ना, उसमें दादी जी खाता के लिए रोका था। उसके बाद में हमने उसको लोन लिया है। 1 हेक्टेयर जमीन दादी जी, 1 हेक्टेयर जमीन है और उसके ऊपर उसने 1,47,000 रुपये लोन निकाल दिया है। अब 1 हेक्टेयर की जमीन 2.5 एकड़ जमीन पे इतना लोन मतलब इतनी खाद बीज कौन देता है? मतलब अगर हमने ली भी होती तो 2.5 एकड़ जमीन पे क्या 1.5 लाख की खाद बीज हमको देते गई है सोसाइटी वाले? उसके बाद में उनके ऊपर अभी 1,43,000 रुपये का लोन आ गया है।
किसान नेता केदार सिरोही ने बताया कि किस तरह से यह पूरा घपला किया गया है।
इनकी जो अकाउंट है वो समिति के जो सेवक होते थे, जो समिति के ऑफिस हैं, वो लोग ऑपरेट करते रहे। वो इनके खातों में कई जगह दो दो खाते चला दिए, कई जगह तीन खाते चला दिए, कई जगह किसान नहीं है उसके बाद भी उसके खाते से पैसा लेकर रोटेट करते थे। ये क्यों करते थे? मान लीजिए कि इनने 10 करोड़ रुपया उससे निकाल लिया 0% पे, यार में उसको चला दिया, फिर समय आया उसको भर दिया, ऐसे रोटेट करते रहते थे तो इनका सेकेंडरी इनकम आता था।
डावोस से लौटने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदेश दिया है कि इस तरह के मामलों में फौरन जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई है क्योंकि खास करके कोऑपरेटिव बैंक में कि जिन्होंने कर्जा नहीं लिया उनके नाम पर बैंक के कर्मचारियों ने कब दिखाया है कि उनका ड्यू है, पर ये सब जो बातें अब सामने आई हैं, पर ये सब जो घपले हुए हैं कब हुए? पिछले एक महीने में तो हुए नहीं। इसका मतलब ये जो थे घपले की परंपरा ये सालों से चल रही थी और इसमें मिली जुली भगत थी इसमें। तो मैं कहता हूँ कि इसमें हम पूरी जांच कराएंगे और जहाँ जहाँ ये आ रही है मैंने तो निर्देश दिए कि FIR लॉन्च किया जाए।
इस पूरे मामले में किसान राजस्व और सहकारिता विभाग की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। सहकारिता अधिनियम में यह बात लिखी है कि किसानों ने जो कर्ज लिया है उसकी सूची तहसीलदार को भेजी जाए और उसे किसान की ऋण पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाए। राजस्व विभाग ऑनलाइन हो चुका है और किसानों के भू राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि की सुविधा है। यह सुविधा व्यावसायिक बैंक तो ले रहे हैं लेकिन सहकारी बैंक में यह सुविधा मौजूद नहीं है, जिसका फायदा सहकारी समितियों द्वारा उठाया जा रहा है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की बात करते हैं, जहां बीते रविवार को 22 आदिवासी परिवारों के 98 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। ऊनाकोटी जिले के राचीपाड़ा गांव में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां यज्ञ के बाद आदिवासियों का तथाकथित शुद्धिकरण किया गया और उन्हें हिंदू बनाया गया। इस घटनाक्रम से ठीक पहले कुछ आदिवासियों पर उस बैल की जान लेने का आरोप लगा था जिसे हिंदू समुदाय ने भगवान शिव के नाम पर छोड़ा हुआ था। क्या है पूरा मामला, सुनिए त्रिपुरा के राचीपाड़ा गांव से दीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट में।
अभी बीते हफ्ते तक 28 साल की मंगरी मुंडा अपनी बीमार बेटी के लिए प्रार्थना करने गिरजाघर जाया करती थी, लेकिन अब वो ईसाई नहीं रही। पिछले रविवार को मंगरी का पूरा परिवार ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू बन गया है। हालांकि 4 बच्चों की मां मंगरी के माथे पर न कोई सिंदूर है और न ही उन्होंने हाथ में शाखा पहन रखी है। ईसाई से हिंदू बनी मंगरी इस नए बदलाव पर कहती है,
आगे तो क्रिश्चियन थकते तो गिरजा जाता, अरे तो
मैं अब हिंदू बन गई हूँ। पहले जब ईसाई थी उस समय गिरजाघर जाती थी, लेकिन अब कहीं नहीं जाती। हम बहुत तकलीफ में गुजारा कर रहे हैं। चाय बागान भी बंद हो गया है। बड़ी बेटी मानसिक रोगी है और उसके इलाज के लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। कौन मदद करेगा? लोग तो केवल धर्म की बात करने आते हैं। ये थे मंगरी मुंडा के शब्द। राजधानी अगरतला से करीब 170 किलोमीटर नेशनल हाईवे 8 पर छोटे बड़े 3 पहाड़ों को पार करने के बाद मैं राचीपाड़ा गांव पहुंचा। मिट्टी और जंगल के टीले पर बसे इस गांव में न कोई पक्की सड़क मिलती है, न कोई स्कूल और न ही कोई अस्पताल है। वैसे तो यहां की खबर कोई नहीं रखता, लेकिन यहां बसे उरांव और मुंडा जनजाति के लोग जब से हिंदू बने हैं मीडिया की सुर्खियों में जरूर आ गए हैं। आखिर अचानक इन आदिवासी लोगों ने अपना धर्म क्यों बदल लिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन हिंदू जागरण मंच के स्थानीय नेता आदिवासी लोगों के हिंदू बनने की इस घटना को घर वापसी बता रहे हैं। हिंदू जागरण मंच की त्रिपुरा इकाई के अध्यक्ष उत्तम दे कहते हैं,
नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, उन लोगों ने समझ लिया। देखिए क्रिश्चियन तो कैसे हुआ, ये तो ये इनका पिताजी दादाजी सब कुछ तो हिंदू था। 5 साल 10 साल 15 साल हुआ ये क्रिश्चियन में गए थे, उनको ऐसा ऐसा डर दिखाया था। उन गांव में जाके मैंने 2-3 बार इस गांव में गए थे, मैं तो बोला हम लोग ऐसा क्रिश्चियन से बाहर आना चाहते है।
लेकिन राचीपाड़ा गांव में हिंदू बने अधिकतर लोगों का कहना है कि बीते दिसंबर में क्रिसमस के समय गांव के कुछ आदिवासी लड़कों ने एक पवित्र बैल की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद उनके गांव का माहौल काफी बिगड़ गया। पवित्र बैल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए 45 साल के बिरसा मुंडा धर्म बदलने की मजबूरी को कुछ इस तरह बयां करते हैं।
धर लो इतना गोरु काट से रायते हमारे डाक से रायते जवार तरारोनो देखी यही रकम यही रकम।
उस रोज बुधना टीले के पास किसी ने गाय काटी थी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस घटना के दूसरे दिन कुछ लोग मुझे घर से निकाल कर ले गए और मेरी पिटाई की। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं वहां गया था, मैंने उन लोगों की सारी बात मान ली और अब फिर हिंदू बन गया हूँ। ये थे बिरसा मुंडा के शब्द। ईसाई से हिंदू बने रांचीपाड़ा गांव के जिडांग मुंडा ने बीबीसी से कहा,
जब गड़बड़ हुआ वो शांति होने के लिए कैसे शांति होगा, मारपीट हम लोग को करेगा। पहले था हम लोग सनातन धर्म में, उसका बाद हम लोग गया यीशु मसीह का धर्म में, अभी इसका बाद और फिर सनातन धर्म में चला गया। अभी किसका फोटो लगाऊं हम लोग का तो अभी टेंशन में हूँ, किसको मानूं और किसको छोड़ूं।
दरअसल रांचीपाड़ा गांव के लोगों ने साल 2009 में ईसाई धर्म अपना लिया था। गांव के बुजुर्ग ईसाई धर्म अपनाने के पीछे अपने बच्चों को मानसिक बीमारी से निजात दिलाना बताते हैं। लेकिन केला शहर से CPIM के विधायक मुबश्शिर अली हिंदू जागरण मंच के कामकाज पर सवाल उठाते हैं।
ये बीजेपी आने के बाद लास्ट 30 महीने से ये चल रहा है, कुछ माहौल तैयारी करने के लिए कोशिश चल रहा है।
वहीं वाम दल के विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए पाबियाचारा के बीजेपी विधायक भगवान दास कहते हैं,
डर का बात कुछ नहीं है। जो धर्मांतरण जो बहुत पहले से चल रहे हमारे यहाँ, जो ट्राइबल बेल्ट है और श्रमिक इसमें चल रहे बहुत पहले से, तो हमारी तरफ से कुछ संगठन है इसका तरफ से इसका रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
त्रिपुरा में उराम मुंडा जैसी जनजातियों का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। बिहार झारखंड जैसे राज्यों से यहां के चाय बागानों में काम करने आए इन लोगों के जीवन में इन 100 वर्षों के दौरान कोई बदलाव नहीं आया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित इन लोगों के हिंदू बनने के बाद भी आगे समाज में इनकी स्वीकारिता आसान नहीं दिखती। दिलीप कुमार शर्मा, BBC रांचीपाड़ा गाँव, त्रिपुरा।
और अब अखबारों की समीक्षा। कमलेश, क्या कहते हैं अखबार
आज के अखबारों में? आदर्श, जैसे कि कल भारत का गणतंत्र दिवस था तो सभी अखबारों की मुख्य खबर वही है। झांकियों की रंग बिरंगी तस्वीर है, परेड करते जवान हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर लांस नायक नजीर अहमद वानी की पत्नी और मां की तस्वीर है। अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया है। और यही हिंदुस्तान टाइम्स में देखें तो राष्ट्रपति भवन की जगमगाती तस्वीर है
जी।
और नवभारत टाइम्स में इन्होंने एक मुख्य खबर दी है, पराक्रम पथ पर दिखे महिला शक्ति के कदम, यहाँ मार्च निकालती महिलाओं की, महिला सैनिकों की तस्वीर दी गई है
जी।
और इसके अलावा हम देखें इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के CBI को जांच के तरीके पर सलाह देने के बाद आज ICICI बैंक में कर्ज अनियमितता मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला कर दिया गया है
जी।
इस अधिकारी ने ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर के FIR पर हस्ताक्षर किए थे और इसमें चंदा कोचर के जो पति हैं उनका भी नाम है इस मामले में
जी। मैं दैनिक जागरण में एक खबर पढ़ पा रहा हूं कि 29 तक वापस लाए जा सकते हैं मेहुल चोकसी और जतिन पटेल, और ये कहा गया है कि जो आर्थिक भगोड़ा जिनको घोषित किया गया है उन्हें कैरेबियाई द्वीप से भारत लाया जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों को एक ही जगह से लाया जाएगा या अलग अलग जगह
जी
से।
कई अखबारों ने लिखा है कि सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वेस्ट इंडीज जाएंगे अधिकारी
जी।
इसके अलावा जनसत्ता की एक खबर है कि जानी मानी लेखिका गीता मेहता ने पद्मश्री सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इस साल चुनाव होने हैं तो इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि गीता मेहता ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन है। और इसके अलावा दैनिक जागरण में खबर है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वकील गौतम खेतान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जो है कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश। और अब बात उन खबरों की जो पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते सुर्खियों में रही। इस रिव्यू को तैयार किया है BBC संवाददाता इकबाल अहमद ने और आप सुनेंगे हमारे सहयोगी अपूर्व कृष्ण से।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते अमरीका और तालिबान के बीच समझौते से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। पाकिस्तान के अखबारों में इस खबर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की मदद से दोहा में ये बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत में अमरीका और तालिबान के अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पिछले साल दिसंबर में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को खत लिखकर तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। अखबार दुनिया ने तालिबान पर गहरी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ जई के हवाले से लिखा है कि जुलाई 2018 से ये बातचीत चल रही थी, बीच में इसमें रुकावट पैदा हुई थी लेकिन बातचीत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि तालिबान और अमरीका को बातचीत की मेज पर लाकर पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। पहले ये बातचीत इस्लामाबाद में होने वाली थी लेकिन बाद में दोहा में बातचीत करने का फैसला किया गया। प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं थी कि बातचीत कब और कहाँ हो। उन्होंने कहा कि अमरीकी सेना इस युद्ध को समाप्त करने में पाकिस्तान की भूमिका को स्वीकार करने के बाद ही अमरीका वापस जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की नई वीजा पॉलिसी भी अखबारों की सुर्खियों में रही। अखबार नवाए वक्त के मुताबिक पाकिस्तान ने नई वीजा पॉलिसी को लागू किया है, जिसके तहत 175 देशों के लिए ई वीजा की सहूलियत, 50 देश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। अखबार के अनुसार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए कहा, सरकार ने 70 साल के बाद नए दौर की शुरुआत की है। नई वीजा पॉलिसी से पाकिस्तान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पर्यटन नए पाकिस्तान की बुनियाद बनेगा। फवाद चौधरी ने बताया कि भारतीय मूल के अमरीकी और ब्रितानी नागरिकों को भी वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। अखबार के अनुसार एक बहुत ही अहम फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पत्रकारों को वीजा देने का फैसला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा। एक अन्य खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1 अरब की आर्थिक मदद दी है। पिछले साल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $12 अरब का विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। उस समझौते के तहत सऊदी अरब को $3 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में भेजना था। $1 अरब की दो किस्त सऊदी अरब पहले ही दे चुका है। इस हफ्ते उसने तीसरी किस्त भी पाकिस्तान को दे दी है। अखबार के अनुसार इस समय पाकिस्तान के पास $15 अरब से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व हो गया है, लेकिन अखबार दुनिया के अनुसार सऊदी अरब से मिलने वाली रकम कोई मदद नहीं बल्कि निवेश है, जिस पर पाकिस्तान को सालाना 3% का ब्याज देना होगा।
पाकिस्तान से छपने वाले अखबारों की सुर्खियां आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी अपूर्व कृष्ण से।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
पिछले दिनों 91वें अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स के लिए फिल्मों के नामांकन का ऐलान हुआ। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में नामांकन मिला है। फिल्म का निर्देशन रायका जिताबजी और निर्माण गुनीत मोंगा के सिक्ख्या एंटरटेनमेंट ने किया है। बीबीसी न्यूज मेकर्स में उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी इंदु पांडे।
बीबीसी न्यूज मेकर्स में मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे और आज हमारी मेहमान है गुनीत मोंगा, जो कि दिल्ली में पली बढ़ी हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर के तौर पर की थी। गुनीत मोंगा की फिल्म जो कि मासिक धर्म को लेकर के जागरूकता पर बनी है और भारतीय पृष्ठभूमि की फिल्म है, जिसका नाम है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में टॉप 5 नामित फिल्मों में शामिल हो गई है ऑस्कर के लिए। तो सबसे पहले गुनीत को बहुत बहुत बधाई। और गुनीत, ये जो सफर आपने शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए।
बहुत अच्छी, इन सब लोगों के साथ, उन सब के बच्चों के साथ और यहाँ पर हापुड़ के बच्चों के साथ हमने एक्शन इंडिया एनजीओ के साथ टाइप किया, जिनका विलेज था हापुड़, जहाँ पर हमने ये फिल्म शूट की और एक पूरा टाइम कवर किया मशीन लगाने से पहले और मशीन लगाने के बाद, कैसे लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं, कैसे लोग स्कूल जाने लग गए हैं। एक मशीन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, तो वो इम्पैक्ट और वो एसेंस इस पिक्चर में हमने कैप्चर किया।
मासिक धर्म को लेकर के जागरूकता पर बनी इस फिल्म के लिए गुनीत का कहना है,
बहुत ही ज्यादा हार्ट है और बहुत ही ज्यादा स्पिरिट है, यू नो, और हर टैबू से ब्रेक फ्री करने की एक लगन है। ये सब सोसाइटी हमारे ऊपर कहती है कि तू लड़कियां ये नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकती, मतलब दिस इज गर्ल्स इन द सेंटर एंड जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको वो पुलिस ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग कर रही है, तो इट्स अ फिल्म विद बिग हार्ट।
और जहां तक बात है भारतीय फिल्मों में महिलाओं की भागीदारी की, उस पर गुनीत का यही कहना है,
शायद वो गुड इनफ नहीं है, अरे एक्शन फिल्म तो नहीं कर पाएंगे, अरे ये तो, मतलब ये सब प्री कंसीव नोशन ही है, मतलब पिक्चर तो पिक्चर ही है ना, इतने सारे शेफ मैन है उनके बारे में तो नहीं बोला जाता कि अरे ये खाना नहीं बना पाएंगे, लड़कियों के लिए क्यों बोला जाता है कि वो शायद ये वाली कहानी नहीं बोल पाएंगे, ऐसी फिल्म बनती है तो फिर लगता है कि अच्छा हाँ लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं तो हम भी करेंगे।
गुनीत, आपने अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, वो अनुभव जरा बताइए।
अनुराग कश्यप के साथ काम करना बहुत अच्छा था एंड उन्होंने तो हमेशा इक्वालिटी से ट्रीट किया, तो ऐसा कोई थॉट नहीं था उस समय, बट जितना हम इंडस्ट्री में और देखते हैं और काम हो रहा है तो काफी जजमेंट है।
हालांकि इससे पहले अक्षय कुमार ने पैडमैन नाम की फिल्म बनाई थी जो कि मासिक धर्म पे आधारित थी और इस फिल्म को लोगों ने काफी सराहा भी, और अब एक और फिल्म है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें की रियल लाइफ पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथन ने भी काम किया है, और अच्छी फिल्मों को लेकर के गुनीत यही मानती हैं।
आई थिंक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरूरी है, अच्छी फिल्म को दूर तक ले जाना बहुत जरूरी है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। एंड बॉक्स ऑफिस काफी एरेटिक होता है, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता। बट आजकल हमारे बायर्स बहुत बदल गए हैं, आजकल बॉक्स ऑफिस का इतना महत्व नहीं है इन इंडिपेंडेंट फिल्म्स, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, यूट्यूब है, और यू नो Zee5 है, तो आजकल तो फिल्में यहाँ रिलीज भी हो रही हैं, तो वहाँ तो बॉक्स ऑफिस का महत्व नहीं रह गया। तो आई थिंक अच्छी फिल्म बनाओ, पूरी दुनिया में दिखाओ, और जहाँ अच्छी तरह से रिलीज कर सकते हो जितने जोरों शोरों से वहाँ करो।
26 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में उत्तर भारत की लड़कियों और महिलाओं और उनके गांव में लगाई गई एक पैड मशीन के साथ उनके अनुभव को चित्रित किया गया है, और इस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर में शामिल किया गया है। और इसी के साथ दीजिए इंदु पांडे को इजाजत, नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को कल बे ओवल में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बेहद आसानी से 90 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में बेहद महत्वपूर्ण 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 325 रनों जैसा विशाल लक्ष्य था, लेकिन उसकी पूरी पारी 40.2 ओवर में 234 रन पर सिमट गई। एक समय तो न्यूजीलैंड ने अपने 8 विकेट केवल 166 रन पर खो दिए थे। ऐसे में पुछल्ले बल्लेबाज डग ब्रेसवेल ने 46 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने दिया। उन्होंने 45 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। कैसे उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को बांधा, इसका राज भी उन्होंने खुद खोला।
कंडीशंस अच्छी है, बॉल अच्छा निकल रहा है हाथ से, विकेट से बाउंस हो रहा है, टर्न हो रहा है, जो कि चाहिए होता है। तेज आ रहा है बैट पे, तो बैट्समैन थोड़ा सा उसको लग रहा है इतना इजी नहीं बैकफुट पे खेल रहा है, और वेरिएशन अच्छे जगह से यूज कर रहा हूं, बैट्समैन को कंफ्यूज कर रहा हूं। जो भी 2 विकेट निकाले पहले ऊपर के, उनको दिखाया कि मैं रॉन्ग वन फेंकूंगा, पर चाइना मैन बॉल डाली।
इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में केवल 4 विकेट खोकर 324 रन बनाए। सलामी जोड़ी शिखर धवन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 154 रन जोड़कर दिखा दिया कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में कोई दम नहीं है। शिखर धवन ने 66 और रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने 43, अंबाती रायडू ने 47 और महेंद्र सिंह धोनी ने 48 रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूती दी। दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला बे ओवल में ही कल खेला जाएगा, जहां न्यूजीलैंड के सामने सीरीज को हारने से बचाने और रोमांच बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की स्टार महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल इंडोनेशिया मास्टर्स के महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना आज 5वीं वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन से होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में 8वीं वरीयता हासिल साइना नेहवाल ने 6ठी वरीयता हासिल चीन की ही बिंग जियाओ को बेहद कड़े मुकाबले में 18-21, 21-12, 21-18 से हराया। वहीं साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन को महिला एकल वर्ग में नई चैंपियन मिली। जापान की 21 साल की नाओमी ओसाका ने कल फाइनल में 8वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा को 7-6, 5-7, 6-4 से हराया। ऐसी कामयाबी हासिल करने वाली वो पहली जापानी खिलाड़ी है। दूसरी तरफ पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल के बीच होगा। भला इससे बेहतर फाइनल क्या होगा।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते के आसार बनते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान की यात्रा पर गए अमेरिकी प्रतिनिधि जलमय खलीलजाद तालिबान के साथ बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी सरकार को देंगे। संयुक्त राष्ट्र में अन्य सदस्यों से वेनेजुएला में विपक्ष के नेता खुआन गायदो को मान्यता देने की अपील की गई है। अमरीकी गृहमंत्री माइक पोम्पियो ने अन्य सदस्यों से अपील की। वहीं रूसी राजदूत ने अमरीका पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। ब्राजील के मिनास शराइस राज्य में बांध गिरने से कीचड़ के सैलाब में फंसे 50 लोगों को बचा लिया गया है। इस दुर्घटना में अभी तक 34 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।